अय्यूब की पुस्तक वचन संहिता से पहले है, अय्यूब की पुस्तक वचन संहिता से पहले है, जो बहुत ही प्यारी पुस्तक है और इसमें 42 अध्याय है, 42 चैप्टर है। और जब हम अय्यूब के बारे में देखते हैं भजन संहिता से पहले, तो आश्चर्य लगता है कि इसको भजन संहिता से पहले रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं 5 पदों को पढ़ना चाहूंगा, फिर आगे हम बात करेंगे। अय्यूब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1:1-5, पहले 5 पद। उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो निर्दोष खरा तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। फिर उसके पास 7,000 भेड़े, 7,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। वो पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके पुत्र बारी बारी एक दूसरे के घर जाया करते और भोज किया करते थे तथा वे अपनी 3 बहनों को अपने साथ खाने पीने के लिए बुलावा भेज देते थे। जब जब भोजों के दिनों का क्रम समाप्त हो जाता, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े तड़के उठकर उन सब की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, संभवतः मेरे पुत्रों ने पाप किया हो और अपने मन में परमेश्वर की निंदा की हो। अय्यूब निरंतर इसी प्रकार किया करता था। ये 5 पद में अय्यूब का परिचय है। अय्यूब कैसा व्यक्ति है और क्या करता था, उसका परिवार कैसा था। जब अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो अय्यूब वास्तविक से कि इस काल का, जिस काल में भजन संहिता लिखी गई है, उस काल का व्यक्ति नहीं है, उस पीरियड का, उस समय का व्यक्ति नहीं है। ये बहुत पहले इब्राहिम के समय का व्यक्ति है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ वही समय में अय्यूब का जन्म और अय्यूब का समय का माना जाता है, क्योंकि जो कुछ उसके परिवार के बारे में वर्णन है वो इस बात को दर्शाता है, उसकी जो संपत्ति उसके अनुसार जो हम उस समय देखते थे। दूसरी एक का बात और देखते हैं कि कैसे, क्योंकि अय्यूब अपने पूरे इस 42 अध्याय में 28 बार परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके पुकारता है, बार बार सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में, तो उत्पत्ति में 17 अध्याय में, उत्पत्ति के 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, और इस करके परमेश्वर ने अपना परिचय कराया। और पूरे उत्पत्ति में अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ निरंतर इसी प्रकार से अपने आप को प्रकट करता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान। और जब निर्गमन में हम आते हैं तो निर्गमन उसके 6 अध्याय के 30 के पद में आते हैं, तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि देख, मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके प्रकट किया है, लेकिन अब मैं तुझे यहोवा के नाम से प्रकट कर रहा हूं, मैं यहोवा हूं। तो उस काल में परमेश्वर ने अपने आप को अपने सेवकों के ऊपर इस नाम से प्रकट किया था, और जब हम निर्गमन में आते हैं तब उसने अपने स्वरूप से अपने आप को यहोवा नाम से प्रकट किया है। सो इन बातों को देखते हुए देखते हैं कि जो अय्यूब है उस काल का व्यक्ति है। अय्यूब का जीवन बहुत ही सुंदर जीवन है। क्यों अय्यूब की पुस्तक बाइबल में रखी गई है, क्या कारण अय्यूब की पुस्तक को बाइबल में रखा गया। अय्यूब एक ऐसा जीवन है जिसके बारे में परमेश्वर बहुत ही प्रशंसा कर रहा है। परमेश्वर स्वयं कह रहा है वो निर्दोष है, आगे भी उसने सुनता, वो खड़ा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। ना केवल इतना है, लेकिन वो अपने परिवार का अच्छा संचालन करता है, परिवार की देखभाल करता है, ना केवल परिवार की देखभाल करता है, लेकिन उसके हृदय में ये भी चिंता है कि मेरे बच्चे कहीं
में भी वही धार्मिकता पवित्रता का जीवन पाया जा सके। सो एक ऐसा सुंदर परिवार। लेकिन जब उसके आगे हम देखते हैं तो एक लंबी कहानी अय्यूब के जीवन में पाते हैं। अय्यूब के जीवन में आगे चल के बात आती है। जब बाइबल को पढ़ते हैं तो दो शब्द आते हैं इंग्लिश में, टेस्ट एंड टेम्पटेशन। टेस्ट परख और परीक्षा। कई बार ये शब्द ऐसे शब्द है जो हिंदी में जब पढ़ते हैं हमें मुश्किल लगता है उसको समझना, कहां परीक्षा है कहां परख है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है पहला कृतियों उसके 10वें अध्याय के 13वें में कि परमेश्वर तुम्हें किसी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा जो सहने से बाहर हम परीक्षा करते हैं। लेकिन वास्तविक से वो परीक्षा जो होती है, खास से अगर याकूब को पढ़ेंगे तब भी वहां पर परीक्षा के बारे में बातें हैं। परीक्षा क्या है और परख क्या है, अय्यूब की पुस्तक को समझने के लिए हमें दोनों शब्दों को समझना बहुत अधिक अनिवार्य है। परख हमेशा हमारे जैसे सोना को परखा जाता है, उसकी खराई पर को देखा जाता है, उसको पाया जाता है, उसके खराई पर उसके विश्वास को उसके जीवन को इसको जाया जाता है। परीक्षा हमेशा गिराने के लिए होती है। परीक्षा गिराने सिर्फ परमेश्वर हमें तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ सकता जो तुम्हारे सहने से बाहर है, परंतु तुम्हारा विकास करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई विश्वासी गिर जाए, नाश हो जाए, हताश होकर बर्बाद हो जाए। शैतान चाहता है, उसका विरोधी चाहता है कि वो हताश हो, निराश हो, गिर जाए, पराश हो जाए, हार जाए। लेकिन परमेश्वर अपने विश्वासी को पराजित होते नहीं देख सकता। और इसीलिए नीति वचन में लिखा है कि यदि धर्मी 7 बार भी गिरे तो परमेश्वर उसको जब हम परमेश्वर के वचनों को समझने का प्रयास करते हैं तो अच्छा ही होता है कि हम और भी स्थानों में और बाइबल को की व्याख्या करती है, बाइबल को समझाती है, हमें अलग अलग स्थानों में देखना। सो अय्यूब के लिए यहाँ पर हम जब पाते हैं तो एक कहानी के रूप में समझा हूं। अय्यूब बहुत चीज के जीवन में चल रहा है, अचानक से शैतान डोलता हुआ आ जाता है और शैतान कहता है कि अरे अय्यूब तो इसलिए तेरा भय मानता है, इसलिए तेरा आदर करता है, इसलिए तेरे से प्रेम करता है कि तूने उसको बहुत सारी आशीष दिए, धन दिया, संपत्ति दिए, बच्चे दिए, बीवी दिए और सारी चीजें, इसलिए उससे आज प्रेम करता है। परमेश्वर कहता ऐसा नहीं, परमेश्वर कहता ऐसा नहीं, ये इसलिए मुझसे नहीं प्रेम करता, इसलिए मेरा भय नहीं मानता कि मैंने उसको इस सारी संसारिक आशीष से आशीष दिया है। प्रश्न है, क्या आज हम परमेश्वर से इसीलिए प्रेम करते हैं, इसीलिए उसका भय मानते हैं कि उसने हमें संसारिक आशीष से आशीष दिया? परमेश्वर कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तब परमेश्वर अनुमति देता है, ठीक है तो देख ले पर। और तब उसके बाद उसकी यात्रा शुरू हो जाती है और वो यात्रा एक पीड़ा की यात्रा है। उसकी यात्रा एक पीड़ा की, उसके जीवन में उतार चढ़ाव है। और तब उसके बाद हम जब अय्यूब के जीवन को देखते हैं, पहले दूसरे अध्याय में अय्यूब और शैतान है और उसके बाद 3 अध्याय से लेकर 31 अध्याय तक उसके 3 मित्र हैं जिन्होंने सुन लिया कि अय्यूब के ऊपर परेशानी आई और वो आकर उसको संतावना देना चाहते, उसको चाहते कि तसली दे। लेकिन उनकी संतावना में बहुत सारी मिथ्याएं पाई जाती है और इसलिए परमेश्वर का वचन उनको निकम्मे वैद्य कहता है, परमेश्वर का वचन उनको निकम्मे संतावना देने वाला कहता है, परमेश्वर का वचन उनको व्यर्थ बातें करने वाला कहता है इस अय्यूब की पुस्तक। लेकिन उसके बाद आगे चलकर एक और सलाहकार है, वो सबसे छोटा है अय्यूब में, उसका नाम एलीहू है, 33 अध्याय। और तब एलीहू आ करके उसको कुछ सलाह देता है, सलाह देता है। और तब उसके बाद आगे चल के हम देखते हैं कि जरूर वो धर्मी था, सब कुछ था, लेकिन हम कुछ बातों को आगे चल के देखना चाहेंगे, परमेश्वर का वचन में क्या सिखाना चाहेंगे इस टेस्ट में, इस परख में। अय्यूब कैसे जीवन को व्यतीत कर रहा है, निराशा उसके सामने आ रही है, हताशता उसके सामने आ रही है, वो ऊपर उठ रहा है, नीचे हो रहा है, एक उसके लहरों के समान उसका जीवन चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में वो परमेश्वर को देख रहा है। और जो आज सुबह मैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि सुबह कि उसने परमेश्वर को क्या देखा है, परमेश्वर ने उसको क्या जाना है, परमेश्वर ने अय्यूब ने परमेश्वर को क्या देखा है, अय्यूब ने परमेश्वर को क्या जाना है, क्या समझा है, और उसके समझने के कारण अय्यूब कैसे स्थिर रहता। सो मेरा मैं जो आज आपके सामने इस द्वार बांटना चाहता हूं, पहला कि अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में क्या जान लिया, क्या अनुभव कर लिया, क्या सीख लिया, और आने वाले हफ्ते में अगर उसने परमेश्वर को ये जान लिया, ये सीख लिया, तो अब अय्यूब की इन सारी प्रश्न में कैसी प्रतिक्रिया रही है, कैसी प्रतिक्रिया रही। और हम जो विश्वासी हैं, हम जो मसीह के पीछे चलते हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु और उद्धार करता ग्रहण किया है, हमारे सामने भी जीवन में उतार चढ़ाव है, लेकिन क्या उतार चढ़ाव में हम अपने परमेश्वर को क्या देखते हैं, हम अपने परमेश्वर को क्या, जितना अधिक हम परमेश्वर को समझेंगे जानेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। बाइबल में और संसार के अन्य मार्ग में सबसे बड़ी बात मिलता ही है, हमारी बाइबल बड़े स्पष्टता के साथ परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, इसका स्पष्ट विवरण देती है। और इसीलिए बाइबल में हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उसके गुणों के द्वारा, उसके स्वभाव के द्वारा, उसके व्यवहार के द्वारा। जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं, अय्यूब को पराजित करने के लिए नहीं, परंतु शत्रु शैतान को लज्जित करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। कि पहला कारण कि शत्रु शैतान जो उसका विरोधी है वो अंततः लज्जित होता, परास्त होता है। और एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का सहायक है और परमेश्वर उसको खड़ा करता है और शैतान उसके जीवन में पराजित होता है, यदि परमेश्वर के साथ वो विश्वासी बनाता है। दूसरी बात, ये पुस्तक इस बात को बताती है सच्ची धार्मिकता स्वयं के कार्यों से नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। सच्ची धार्मिकता स्वयं के कार्यों के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है। तीसरी बात, परमेश्वर क्या है और वो अपने लोगों के साथ एवं उनके लिए क्या करता है। तीन मुख्य बातें हैं जो हम इस पूरी पुस्तक में देख सकते हैं, परमेश्वर को सच्ची धार्मिकता प्रदान करने का संदेश। और जब हम इस बात को देखते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक से ही हम उस सुसमाचार को पाते हैं, जैसे बार बार याद करते हैं उत्पत्ति उसके 30 अध्याय और 15 पद। और अय्यूब की पुस्तक में भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार को हम ये खुलासे रूप में लेकिन उसके अर्थ को वहां पर पाते हैं, उसके गुप्त भेदों को वहां पर पाते हैं जो सुसमाचार का भेद है। सो आइए हम आगे बढ़ेंगे देखना। अब ये अय्यूब के मैंने बताया तीन मित्र थे उनके लिए कहा गया ना, और जो आज ये सारी घटना है, अब वो घटना है। और आप जानते हैं बात को सुना हुआ, जब अय्यूब के पास तकलीफ आई क्या हुआ, वो बैठा होता आनंद के साथ बैठा होता और एकदम से उसको खबर मिली कि उसके नौकर मर गए, फिर खबर मिली उसके कर्म से बच्चे मर गए, फिर उसको खबर मिली कि उसके सारा जितना संपत्ति धीरे धीरे वो नाश हो गई, सब कुछ धीरे 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 नाश होता। यहां तक कि उसने ये देखा कि उसकी पत्नी ने भी उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके जीवन में एक दृढ़ता है, उसके जीवन में एक दृढ़ता है और उसका मूल विश्वास आधार विश्वास ये है। 25 पद है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, मुझे तो निश्चय। 19:25 पद, ये उसका एश्योरेंस है, ये उसकी दृढ़ता है, जीवन की कठिन परिस्थिति में, जीवन के संघर्ष में, जीवन की विपत्ति में आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ओ मेरे प्रियो, दुनिया धन और इन सारी चीजों में, सारी चीजों के पीछे उसके द्वारा खुश रहती है, जरूर ये हमारे सहायक है लेकिन सबसे बड़ा ये नहीं है। शरीर जरूर ये सहायक है लेकिन सबसे बड़ा ये नहीं है। जो भी संसार की चीज देखते हैं, पर सबसे बड़ा हमारी निश्चयता यह है, हमारी निश्चयता है कि हमारा परमेश्वर जो हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है और वो वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो हमारा जीवित परमेश्वर। So, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जब मैंने बताया कि इन सारी चीजें हो रही है और उसके मित्र आए, हम मित्र बने जाएंगे, लेकिन आगे 34 अध्याय और 34-35 अध्याय हम कुछ बातों को देखना चाहेंगे कि वहां पर अय्यूब क्या देखता है अपने परमेश्वर को कैसे देखा है। और जब हम अपने जीवन में मैं इस बात को बार बार जोर देकर बोलता हूं और हर विश्वासी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों, केवल ये मत कहकर संतुष्ट रहिए कि हमने उद्धार पा लिया, ये कहकर संतुष्ट मत रहिए कि हम बचाए गए, हमने सुषमाचार पर को स्वीकार किया। सुषमाचार को स्वीकार करना, दिन प्रतिदिन सुषमाचार में बढ़ना अर्थात परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानना। और जितना अधिक एक विश्वासी दिन प्रति अपने जीवन में परमेश्वर को जानेगा, उतना अधिक उसका विश्वास मजबूत होगा, उतना अधिक उसका चरित्र मजबूत होगा, उतना अधिक वो जीवन में सारे संघर्ष को करने के लिए सफल बनेगा, दृढ़ बनेगा। इसलिए परमेश्वर को जानिए, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर को जानना, उसके गुणों को जानना, उसके अस्तित्व को जाना, उसके कार्य को जाना, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। और अय्यूब की पुस्तक भरी हुई है इसमें, समय जितना देख नहीं, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। मैं सकते बल्कि मैं बस अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, अय्यूब की पुस्तक उसका 34 अध्याय 19 पद, वो शाश्वत के साथ पक्षपात नहीं करता, न धनी को दरिद्र से अधिक महत्व देता है, क्योंकि वे सब उसी के हाथ की कारीगरी है। पहली बात, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। क्यों क्यों वो पक्षपात नहीं करता? वो कह रहा है कि वो शासकों के साथ पक्षपात नहीं करता, न धनी की, तुम्हारे पास भाव, तुम अधिकारी हो, शासक हो, लीडर हो, अगुए हो, ऐसा है वैसा है, ऊंचे पद वाले हो या धनवान हो या ऐसा है, इसलिए ठीक है तुम गलत करो तो कोई बात नहीं, ये गलत करे तो अक्सर कहते ना, वो करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। और क्या कह रहा आगे चल के कह रहा है इसी में 21 पद, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है, वो उसके पद पद को देखता है। क्यों पक्षपात नहीं करता? वो सबको देखता है, मनुष्य कैसे जीवन को व्यतीत करवा। अभी हलचल मची, अच्छा बच्ची, अभी पिछले दिनों में अभी जब ये नोट चेंज की बात होती है, हमने एक दो भाइयों को भेजा और एक दो भाई दो तीन बैंक में जाके पैसा लेकर आए। आज मैं पेपर में पढ़ रहा, मैं पेपर में पढ़ा कि अगर आप एक बैंक से दो बैंक या तीन बैंक चार बैंक पांच बैंक में अगर पैसा निकालेंगे तो 24 तारीख के ऊपर आपके बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जब सरकार जो संसारिक है वो इतनी निगाह रख सकती है, अरे हमारा परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया है, मुझे और आपको बनाया, संसार बनाया, सब कुछ बनाया, वो कह रहा है सबको देखता है, चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, चाहे पद वाले हो चाहे नीचे हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे कोई कहीं का भी हो, वो परमेश्वर हर एक को देखता है, छोटा मेरे वो कार्य को देखता है, मेरे जीवन को देखता है, मेरे स्वभाव को देखता है, मेरी सोच को देखता है, मेरे विचारों को देखता है, मेरे मन साफ को देखता है, मेरे हृदय को देखता है, जो मांस का छोटा सा गोश्त उसको वो देखता है। परमेश्वर सब कुछ को देखता है और वो देखकर न्याय करता है। आगे चल के ना वो देखता है, वो कह रहा है इसी के आगे, वो देखता है 22 पद से, ऐसा कोई अंधेरा या घोर अंधकार नहीं जिसमें अनंतकारी छिप जाए, क्योंकि परमेश्वर के लिए यह अवश्य आवश्यक नहीं कि मनुष्य को अपने सामने न्याय के लिए उपस्थित करे, उसके विषय में भी जांच पड़ताल करे, उसके विषय में भी जांच पड़ताल करे। और आपके ना वो बिना जांच पड़ताल के पराक्रमियों को छूट छूट करता है और उसके स्थान पर दूसरों को खड़ा करता है, इसलिए कि वो उनके कामों को जानता है। वो उन्हें रात में ऐसा उलट देता है कि चिंता झूठ है, वो उनके कामों को जानता है, वो देखता है, वो उनके कामों को जानता है। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर आगे जब कहता है वो न्याय के साथ व्यवहार करता है। सो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, क्यों अय्यूब सोच रहा है मैंने तो इतनी धार्मिकता से जीवन व्यतीत किया, मैंने तो हर साल ऐसा साक्षात्कार करा, मैंने तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना मांगी, मैंने तो मेरे बलिदान चढ़ाए, मैंने तो अपने आप को धर्मी बना के रखना चाहा, मैंने तो ऐसा कहा, लेकिन क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरे प्रियो, कई बार जब हमारे सामने परेशानी आती है, कठिनाई आती है, कष्ट आता है, क्लेश आता है, घटी आती है, तो हम एकदम क्यों ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे साथ, क्या परमेश्वर की प्रार्थना नहीं सुन रहा, मैंने कौन सा काम किया, मैं तो अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रहा हूं, मैंने किसी की चोरी नहीं की है, मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने किसी साथ छल नहीं किया है, मैंने, पर क्यों मेरे साथ ऐसा है। मेरे प्रियो, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ को देखता है, सब कुछ को जानता है, सब कुछ को परखता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ को देखता है, हमारा परमेश्वर सब कुछ को जानता है, हमारा परमेश्वर सब कुछ को परखता है, और उसी के हिसाब से वो मेरे और आपके साथ व्यवहार करता है। पहली बात, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इसलिए अभी हम भजन संहिता 7 पढ़ रहे थे और पहले 7 अध्याय के 11 पद में पढ़ा था कि परमेश्वर सच्चा न्याय है, परमेश्वर सच्चा न्याय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, क्या आपका मन आनंद से भर नहीं जाता, क्या आपका नाम मन हृदय उत्साह से भर नहीं जाता। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है, वो ऐसा परमेश्वर है जो सचमुच में सब कुछ को परखता और सच्चाई से न्याय करता है। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों में उसके 6 अध्याय के 10 पद में, परमेश्वर अन्याय नहीं है वो जो तुम्हारे कार्य को भूल जाए, जो तुमने कार्य को और प्रेम को भूल जाए जो तुमने किए हैं और जो तुम कर रहे हो, परमेश्वर न्याय नहीं। God is not unjust। मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके लिए अपना आशा की बात है, ये मेरे और आपके आनंद की बात है। और जब हम इस बात को धन्यवाद देते हैं तो हम कहते हैं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मेरे को हृदय दिया जो इस गुण के साथ, इस योग्यता के साथ, इस चरित्र के साथ, इस करैक्टर के साथ ऐसा परमेश्वर है। भूल लीजिए संसार में, भूल लीजिए संसार में। और मैं इसीलिए जब मेरे साथ कोई भी बात करता है तो मैं प्रत छीन के रखता हूं कि उसको मैं इस बात के लिए बोध कराऊं कि वो जान सके कि परमेश्वर क्या और कैसा है। दूसरी बात, 35 अध्याय उसका 1 और 2 पद है, ने आज कहा क्या तू इसे न्यायोचित समझता है, क्या तू अपनी धार्मिकता को परमेश्वर की धार्मिकता से बढ़कर समझता है। दूसरी बात, परमेश्वर की धार्मिकता सबसे सर्वोच्च है, परमेश्वर की धार्मिकता सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है, मनुष्य की धार्मिकता कोई भी अपने आप को कितना समझे वो उस स्तर तक पहुंच नहीं सकती। हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर धर्मी परमेश्वर सब कुछ को परखने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर। बार बार परमेश्वर के वचन हम देखते हैं, इसीलिए रोमी है उसके पहले अध्याय हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा परमेश्वर में धर्मी बनाता है, अपनी धार्मिकता में शामिल करता है। पहला अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में हम इस बात को देखते हैं। पहला अध्याय 5 अध्याय के 9 पद में परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा द्वारा अपने सब कुछ उधार, किसी भी से हम उस धार्मिकता में को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? अय्यूब ने अपने जीवन को देख लिया था। और अय्यूब एक जगह क्या कहता है, अय्यूब उसका 15:14-16 पद, अय्यूब 15:14-16 मनुष्य क्या है कि वो निर्दोष हो, ये वो जो स्त्री से जन्मा हुआ है कि वो धार्मिक हो। मनुष्य क्या है कि वो निर्दोष हो, या वो जो स्त्री से जन्मा है कि वो धार्मिक हो। तो फिर मनुष्य कितना घिनौना और भ्रष्ट है जो अधर्म को पानी से के समान पीता है। मनुष्य तो अधर्मी है, मनुष्य तो अधर्मी है। उसके कार्य, उसकी कोशिश, उसके प्रयास, उसका ज्ञान, उसकी समझ, उसकी सब कुछ, संसार की सब कुछ की चीज जो उसको लेकर चल रहा है, उसके द्वारा उसको धार्मिकता नहीं मिलती। मनुष्य क्या सब अधर्मी, और इसीलिए परमेश्वर वचन क्या, सब अधर्म, सब में पाप के और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। तुम्हारे धर्म के कार्य पटे हुए मैले चिथड़े के समान है, परमेश्वर का वचन यशायाह 64 अध्याय में कह रहा है। तुम्हारे सारे धर्म की काम पटे हुए मैले, मेरे प्रियो हम धर्मी नहीं है, हम तो अपने अधर्म से लदे हुए थे। लेकिन अय्यूब इस बात को देखा, यद्यपि वो धार्मिकता के काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातों को समझता जा रहा है और बाद में इस बात को देखता है और उसको भी उस धार्मिकता की जरूरत है जो परमेश्वर की है। और मेरे प्रियो, और आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, अय्यूब तो प्रभु यीशु मसीह से बहुत पहले था, लेकिन आज मेरा और आपके लिए बहुत बड़ी धन्य आशा ये रही है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम अपनी कोशिश से धर्मी नहीं बनाए गए, लेकिन उस पर विश्वास करने द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा जो रोमियो के 5 अध्याय पहले दूसरे पद में है और रोमियो 5 अध्याय के 9 पद में है, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बनाए। सब ने पाप किया, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जो प्राणी पाप करेगा वो निश्चय मर जाएगा। मेरे प्रियो, यदि मुझे और आपको सच्ची धार्मिकता चाहिए तो हम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, अपने प्रयास के द्वारा नहीं, लेकिन उस धार्मिकता को देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दे दिया, ताकि वो मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान करे, मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन जी उठे और अपने प्रभुता में सब को इस राष्ट्र को खोल दे कि हम उस पर विश्वास के द्वारा सच्ची धार्मिकता प्राप्त कर सकें। जितने उस पर विश्वास, अय्यूब देख रहा है, अय्यूब जानता है, ओ संसार के सारे लोग परमेश्वर के दृष्टि में, लेकिन एक ही धर्मी है, वो परमेश्वर, और उसकी धार्मिकता सर्वोच्च है। मेरे प्रियो, क्या उसकी धार्मिकता को हमने देखा, क्या उसकी धार्मिकता को हमने अपने जीवन में अनुभव किया है? कितनी बार आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप अपने कमरे में एकांत में थे, अकेले थे, आप परमेश्वर के वो निहार रहे थे और आपके घुटने झुक गए, आपके आंसू बहने लगे, आप उसकी पवित्रता धार्मिकता देखकर आप रोने लगे, बिखरने लगे, वो प्रभु आपकी धार्मिकता में ना क्षमा कीजिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अपने परिवार का। सदोमी के पापा खुद परिवार से प्रभु ने बड़ी बड़ी चिताएं की, मंदिर में सभी कार्यक्रम का रखे, लेकिन बहुत क्रिश्चियन का विरोध करते थे, उनकी पत्नी पहले प्रभु में आई, उनका विरोध करते थे, लेकिन जिस दिन प्रभु ने उनको अपने आप को प्रकट कर दिया, कई दिन तक वो रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, उनके आंसू नाले के समान बह। मेरे प्रियो, जितना अधिक मैं और आप, मेरा एक एक अंदर की चाहना है कि हम जो विश्वासी हैं, हम परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर को जान सके, हमारा परमेश्वर कैसा है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, जिसको हमने अपना स्वामी माना है, जिसको हमने प्रभु माना है, वो कैसा परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम, जिसके द्वारा मैं आपका। तीसरी बात आगे से क्यों क्या कहता है, ना केवल वो 35 अध्याय के 10 पद में अय्यूब 35 अध्याय
परंतु कोई नहीं पूछता मेरा सृजन वाला सृजनहार परमेश्वर कहां है, मेरा सृजनहार परमेश्वर कहां है। वो हमारा परमेश्वर सृजनहार है जिसने मुझे रचा है, जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे अपने हाथों से सारी सृष्टि उसने कहने के अपने शब्दों के द्वारा कर दी। जब मनुष्य की रचना की बात आई उसने मिट्टी सानी, अपने हाथों से मिट्टी सानी, उसको लिया, पुतला बनाया, उसमें अपना श्वास डाला। ओ मेरे मनुष्य न केवल परमेश्वर के शब्दों के द्वारा रचा गया लेकिन मनुष्य परमेश्वर के परिश्रम के द्वारा रचा गया। सारी सृष्टि शब्द क्यों उसने मेरे और आपको अपने हाथों से रच दिया, क्यों उसने मिट्टी सानी, क्यों उसने मतलब बनाया, क्यों उसने सांस रोका, उससे और इसके वो जो सृजनहार है वो सृजनहार क्या करता है, वो मेरी और आपकी चिंता करता है। चाहे जीवन के किसी उतार चढ़ाव में हो, कैसी यात्रा में हो, जैसे अय्यूब चला जा रहा है, अय्यूब के सामने संघर्ष है, लेकिन अय्यूब का अनुभव क्या हो रहा है, क्या कहता है वो आगे चल के इसी पैर की सजाई के, वो सृजना मेरा सृजना परमेश्वर कहां है, जो रात में भी गीत देता है। पहली बात रात में भी गीत देता है, क्या मतलब रात में गीत होता है, बाइबल में कई जगह जब रात्रि का शब्द आता है भजनकार कई बार घोर अंकार रात्रि के मध्य कई बार स्मरण ये रात्रि हमेशा उस चीज को प्रदर्शित करती है जो मनुष्य का समय परिस्थिति संघर्ष में हो जाती है, चाहे बीमारी कारण हो, चाहे वह सुविधा कारण हो, चाहे रास्ते बंद होने के कारण हो, चाहे उसके जीवन की असफलता कारण हो, चाहे कुछ हो, उसको ऐसा लगता है सब कुछ अंकार अंकार है। लेकिन ऐसे समय में वो क्या कर रहा है, वो गीत दे रहा है, वो हमारे कानों में मां जब अपने बच्चों को अपने हाथों में लेती गाना सुनाते अपने बच्चों से, वो कहां कहां गीत जब उसके बच्चों के कानों में जाते हैं, वो मधुर आवाज जाती है, वो सारे उस बच्चों की चाहे इंद्रा कोरी हो कुछ भी हो धीरे धीरे ना तो लोग गीत देता है लेकिन क्या कहता है, तीन दूसरी बात कहता है जो हमें पृथ्वी के पक्षों से अधिक शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाला वो, क्योंकि उसने मुझे रचा है, आपको रचा है, मुझे आपको बनाया है, वो मेरे आप में रुचि रखता है, मेरे आप को चिंता करता है, शिक्षा कई परिस्थिति में क्या अय्यूब जब इस कठिनाई परिस्थिति में चला था क्या परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था, क्या परमेश्वर को शिक्षा नहीं दे रहा था। लेकिन जरूरी बात जरूर है कि हमारे कान शिष्य के समान खुले हुए, अगर हमारे कान उसके सामने खुले हैं तो जरूर हम उसको शिक्षा को सुने, अगर हमारे कान दूसरी चीजों में बंद कर रखे हैं उसकी शिक्षा हमारे पर कोई असर, लेकिन अगर हम तैयार तो परमेश्वर ने रचा है तो गीत देता है ना केवल कथा शिक्षा देता है, लेकिन एक और बात करता वो तथा आकाश के पक्षों से अधिक बुद्धि देता है, आकाश के पक्षों से अधिक। ऐसा परमेश्वर कितना सुंदर, कितना अद्भुत है जिसने मुझे और आपको रचा है, क्यों ना वो परमेश्वर को देखकर उसकी पढ़ाई करें, क्यों ना उस परमेश्वर को देख के हम और भी कहते हो आप कितने अच्छे परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, आपने मुझे रचा है, ना केवल रचा लेकिन आप कितने अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, कितने अधिक मेरी आप चिंता करते हैं, कितने अधिक मेरी आप हर परिस्थिति में मुझे संभालने के लिए तैयार रहते हैं। मैं प्रभु आपके लिए सच में आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं और अधिक आप पर विश्वास करना चाहता हूँ, विश्वास करना चाहती हूँ, मैं और अधिक आप पर निर्भर रहना चाहता हूँ, आप पर निर्भर रहना चाहती हूँ। संसार में कुछ भी हो जाए, परिस्थिति कैसी कुछ हो जाए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपको जानना चाहता हूँ। परमेश्वर महाराज परमेश्वर महाराज ना केवल परमेश्वर है मुझे और आपको रचा है इसलिए वो मुझे गीत देता है, लेकिन एक और परमेश्वर 36 अध्याय में देखेंगे पांच पद, 36 अध्याय के पांच पद देखिए परमेश्वर सामर्थ्य
परंतु किसी को तुझ नहीं आता, वो समझने की शक्ति में परमेश्वर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर, वो सामर्थ्य वो शक्ति में सामर्थ्य है। अब ये नहीं कि वो रूप करता है, क्या मतलब है सामर्थ्य परमेश्वर? परमेश्वर के सामर्थ का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ को उठा के ले जाना या नदियों को पार कर लेना या ऐसा कर लेना, ये नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ सबसे अधिक अपने लोगों को विजय का जीवन प्रदान करती है। परमेश्वर की सामर्थ हमेशा अपने लोगों को निराश से उठा करके आशा की ओर ले जाती है। परमेश्वर की सामर्थ हमेशा हर वस्ती में निर्बल को बलवंत बनाकर खड़ा करती है, उसके विश्वास को मजबूत करती है। परमेश्वर पर आप निर्भर करते परमेश्वर अक्सर हम उदाहरण सुनते और देते चले आते हैं, सुनते हैं कई बार साधारण उदाहरण है। माँ बच्चे को ले चले और उसका हाथ पकड़ा, अगर बच्चे का हाथ बच्चा माँ के हाथ को ही पकड़े और ठोकर खाए तो हो सकता है कि उसका हाथ छूटा ले जाए, लेकिन अगर माँ बच्चे का हाथ पकड़ ले और वो ठोकर खाए जब मैं अनुमति देता हूं परमेश्वर को सामर्थ्य परमेश्वर को, प्रभु आप मेरा हाथ थाम दीजिए, तो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है कि हर बस्ती में वो मुझे संभाले, वो मुझे विजय मेरे प्रियो। परमेश्वर किसी को ऐसी परीक्षा परखता जरूर है, ट्रायल आते हैं, टेंटेशन हमें परास कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट आते हैं, परख आती है कि हम ताकि उसमें और मजबूत हो, ताकि हम और भी दिन उसमें आगे बढ़े, ताकि और हम उसमें उसके साथ हमारा संबंध क्या हो। ट्रायल आ सकता है, चाहे बीमारी के द्वारा आ सकती है, संघर्ष के द्वारा आ सकती है, विरोधों के द्वारा आ सकती है। अब पिछले दिनों में यहां जो कुछ भी हुआ घटता है घटती कोई ट्रायल था, हम गरीब है अब सुसमाचार प्रचार और सुसमाचार प्रचार भाई लोगों ने भैया ने और हम लोगों ने जितने भी अधिकारी आमादी अफसर बन गया, इन लोगों ने हर अधिकारी को फाइल हाथ में दी, मुझे देखा लोग इंग्लिश में हिंदी में सुसमाचार खुल कर मेरे प्रियो टेस्ट जो था मैं। और अगर हम इस बात को से मैं कह रहा हूं ध्यान दीजिए, टेम्पटेशन लाता है, परास्त करता है, पराजित करता है, और टेम्पटेशन परमेश्वर नहीं लाता। याकूब कहता है कोई ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हुई, परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, परंतु तो मनुष्य स्वयं अपनी अभिलाषा में परेशान करता है, पाप अभिलाषा गर्व होती है और पाप को जन्म होती है और वो उसके कारण या तो उसका पैरा है 15% सो मैं देखना है। सो जब हम किसी विनीति से कठिन परिस्थिति में आ रहे हैं, अभी पिछले दिनों भाई यहाँ पर हमारे हैं बाबूलाल, अभी पिछले दिनों में दिवाली के आसपास के समय उनके घर में एक उनके सामने टेस्ट, क्या टेस्ट, सारे गांव के लोग विरोध में दिवाली नहीं मना, हम तुम्हारे घर को जला देंगे, हम ही कर, लोगों ने बहुत पका सब कुछ करा सारे घर, यहाँ तक कि उनके घर में पटाखा फेंक दिया, उनके कुछ बिस्तर भी जल गया, आए लेकिन ऐसे कितनी बात हमारे जीवन में आते हैं, उन विश्वासियों को जो ऐसे परिवारों से प्रभु में आते हैं उनके सामने कितनों का सामना करना पड़ता, कितनों का सामना, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल रखा कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर उसने वो उनको याद दे दिया, उनको वो हिम्मत दे दी, उनको वो साहस दे दिया कि उन हर परिस्थितियों में हर परिस्थिति में विरोध में भी वो खड़े हो सके और बाद में वो सब शरण। जिन्होंने उसकी ओर देखी मैं किसी की उन्होंने ज्योति पाई, अंतिम बात है। ना केवल ये 41 अध्याय का पहला क्या 41 अध्याय का क्या किसने मुझे दिया है कि मैं उसे लाऊं? संपूर्ण आकाश के नीचे जो कुछ है वो मेरा है। संपूर्ण आकाश के नीचे जो कुछ है वो मेरा है। परमेश्वर स्वामी है। गॉड इज वो स्वामी है। सब कुछ उसका है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन रोमियों कहता है सब कुछ परमेश्वर की ओर से उसी की ओर से उसी के द्वारा उसी के लिए उसकी महिमा निरंतर होती रहती है। कहता है सब कुछ उसी की ओर से उसी के द्वारा और उसी के लिए। रोमियों 11 अध्याय उसका 36 उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। सब कुछ उसी की ओर से उसी के द्वारा उसी के लिए। अगर उसी के ओर से है उसी के द्वारा तो उसका हक भी है। ये मेरा जीवन तेरा अपना नहीं है। ये उसने दिया है। इस पृथ्वी पे जन्म उसने मुझे और आपको उसने दिया है। यदि उसने जन्म दिया तो क्यों दिया है? अपने लिए नहीं, अपने मौज मस्ती के लिए नहीं, लेकिन ये जीवन उसका जीवन बनकर रहे। और कैसे हो गए उसका जीवन बनकर के? इसीलिए पौलुस आगे वर्णन करता है इसके बारे में तुम्हें परमेश्वर की जय स्मरण दिलाकर विनती करता हूं अपने शरीर को जीवित पवित्र भाव होता हो बलिदान करके जाओ दे दो अर्पित कर दो उसको दे दो अर्पित कर। और मेरे प्रियो क्योंकि सब कुछ उसका है वो होना है। अगर वो स्वामी है सब कुछ उसके अधिकार में है तो मेरे प्रियो प्रश्न ये है कि मैंने कितना अधिक उसको अपना पूरा माना। डॉक्टर बिली गांधी ने किताब लिखी विश्वास के बारे में बहुत पहले मैंने पढ़ा था उसका बहुत विज्ञान। और वो कह रहे हैं कि हम परमेश्वर किस प्रकार से व्यवहार करते हैं परमेश्वर। जैसे अगर कोई मेरे घर में आया मैंने ड्राइंग रूम में बैठाया और ड्राइंग रूम में बैठाकर मैं उनके साथ मिला बातचीत करी सब कुछ करा और बात करके प्रार्थना करी और उसके बाद जो कुछ भी चाय पी सब कुछ उसको बच्चा। और तब अगर भाई बालू आए तो बालू भाई कहेंगे कि मैं भाई वाली घर गया ठीक घर गया लेकिन क्या वो मेरे घर में आए एक छोटे से हिस्से तक। और तब वो लिखते हैं कितनी बार हम परमेश्वर के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं परमेश्वर आज तू मेरे और तब हम उसको इस तरह से करते हैं हम उसको ले जाके अपने ड्राइंग में बैठा ड्राइंग रूम में बैठा प्रभु तू यहां बैठा। धीरे धीरे करके प्रभु से कहते हैं अच्छा ठीक है आ जाइए प्रभु मेरे किचन में आ जाइए चलिए लेकिन मेरे बेडरूम में मत जाइएगा क्योंकि अगर वहां जाएंगे तो वहां कुछ ऐसी चीजें प्रभु आपके देखने के लिए नहीं वो मेरे लिए वहां मत जाइए बस आप यहीं तक। हमारा जीवन कई बार ऐसे चलता है कई बार क्या वो हमारा स्वामी है क्या वो हमारा ओनर है क्या सब कुछ उसका है। और इसीलिए पौलुस क्रूसियों को लिखते कहता है क्रूसियों के दूसरे अध्याय जैसा तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया क्रूसियों का दूसरा अध्याय 6-7 पद जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण यीशु मतलब उद्धार करता है मसीहा मतलब मसा का बलिदान करने वाला है लेकिन केवल उद्धार करता नहीं है केवल मुझे बलिदान करने वाला नहीं है लेकिन वो नहीं मेरे जीवन में प्रभु का करने वाला प्रभु है प्रभु करके दंड कर लिया उसी में चलते बढ़ते चढ़ते उसी में चलते बढ़ते चढ़ते अयुब परमेश्वर का ऐसा देख सारी प्रश्न उसकी आंखें खुलती जा रही वो देखता चला जा रहा परमेश्वर क्या है। उसके तीन मित्र तीसरी तरह व्यवहार कर रहे हैं लेकिन ये तीसरा चौथा सलाहकार बहुत अच्छा है उसके साथ सब कुछ को दन करना लेकिन एनी जो सबसे छोटा है किस प्रकार से उसके साथ इस सलाह की बात कर रहा है और पौलुस इस समय में और कुछ तब उसके बाद पौलुस सॉरी या अय्यूब को कुछ और देखना है, और तब एकदम से अय्यूब के जीवन में कुछ बदलाव आता है। लेकिन इन सब कुछ में उसने इस बात को देखा, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर मेरे प्रिय विश्वास कि हमने प्रभु यीशु मसीह ये सच है। यदि आपने आज तक यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धार करता नहीं है, यदि आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को से क्षमा नहीं मांगी और उसको अपने जीवन का स्वामी नहीं माना, मेरे प्रियो आपका मसीह आरंभ है हो सकता है मसीह कृपा कर लेकिन मसीह जीवन सच्चा आरंभ व्यक्तिगत से पापों की क्षमा का अनुभव होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत से नया जन्म का अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैंने इस दिन इस समय ऐसे और वो मेरा स्वामी, वो मेरा उसने मेरे बात अगर आप मेरे प्रियो आप आपका परमेश्वर क्या दिन पर दिन आपका संबंध परमेश्वर से और बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आंखें आपकी खुलती चली जा रही है और आप उसके अस्तित्व को पहचानते चले जा रहे हैं, आप उसकी योग्यता को पहचानते चले जा रहे हैं, आप उसके गुणों को देखते चले जा रहे हैं, आप उसके चरित्र को देखते चले जा रहे हैं और लोग आपको नीचे करता जा रहा है और प्रभु की दया में आप उसके लेकिन जरूर उसके जीवन में संघर्ष था। काश मेरा और आपकी प्रभु सहायता कि मैं और आप इस बात के लिए ललायित हो सके, प्रभु मुझे मैं आपको और भी जानना चाहिए, मुझे समझ कि मैं और भी बुद्धिमान क्योंकि आप सच्चे आप अच्छे आइए
सब प्राप्त करेंगे आपके प्रभु यीशु मसीह।